अब हम आते हैं एक दूसरे चैप्टर पे जिसका नाम है दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म। उत्तर भारत की तरह दक्षिण भारत में भी वैष्णव धर्म का प्रसार तीव्र गति से हुआ। दक्षिण में भागवत धर्म के उपासक संत आलवार कहे जाते हैं, जिनका समय वही रहा होगा जो उत्तर भारत में हिंदू धर्म के पुनरुत्थान का था। उस समय वैष्णव धर्म के संतों के दो वर्ण थे, एक आलवार और दूसरा आचार्य। आलवार अनुयायियों की विष्णु अथवा नारायण के प्रति पूर्व निष्ठा, भक्ति और आस्था थी, जो भजनों की रचना करके अपने इष्ट देव का गुणगान करते थे। इनमें रामानुज का प्रमुख स्थान है। श्री पेरुम बदूर नामक स्थान पर 1016 ईस्वी में एक द्रविड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम केशव और माता का नाम कांतिमती था। कांची के यादव प्रकाश के वे शिष्य थे जो शांकर मत के अनुयायी थे, किंतु बाद में रामानुज उनसे अलग होकर स्वतंत्र चिंतन करने लगे। वे प्रख्यात दार्शनिक, धर्म प्रचारक और समाज के उद्बोधक थे। आचार्य शंकर की भांति उन्होंने उत्तर दक्षिण भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण करते हुए उपदेश दिया। वेदांत सार, वेदार्थ संग्रह, वेदांत द्वीप, ब्रह्मासूत्र, भगवत गीता भाष्य आदि उनके प्रमुख ग्रंथ हैं। उन्होंने वेदांत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसमें तीन नित्य तत्वों की चर्चा की गई है। पहला जीव, दूसरा जड़ जगत और तीसरा परमात्मा। जीव जगत और ब्रह्म पर उपनिषदों में सविस्तार विचार हुआ है, अतः उन्हीं के आधार पर रामानुज के सिद्धांत पल्लवित और विकसित हुए। प्राचीन काल से ही परम ब्रह्म, जीव और जगत की सत्ता को भारतीय दार्शनिकों ने स्वीकृत तथा सूक्ष्म और स्थूल तत्वों का विश्लेषण किया था। उपनिषदों के ज्ञान तत्व में रामानुज का विश्वास था। उनके अनुसार ब्रह्म में चित्त अचित दोनों तत्व हैं। चित्त आत्मा के रूप में है तथा अचित से भौतिक जगत पल्लवित होता है। अचित तत्व प्रारंभ में अविभक्त रहता है, जो बाद में तीन भागों में हो जाता है। पहला तेज, दूसरा जल और पृथ्वी। इनमें क्रमशः सत्व, रज और तम तीन गुण होते हैं, जो धीरे धीरे परस्पर मिलकर स्थूल वस्तुओं के रूप ग्रहण कर लेते हैं। यह त्रिवृत्त करण के नाम से जाना जाता है, जिससे भौतिक जगत का उदय होता है। अतः सृष्टि ब्रह्मा जितनी ही वास्तविक है और जगत सत्य है। अतः सृष्टि ब्रह्मा जितनी ही वास्तविक है और जगत सत्य है। रामानुज ने शंकर की मायावाद का खंडन किया है तथा उन्होंने यह माना है कि ब्रह्मा माया द्वारा जगत के अनेक रूपों में दर्शित होता है। उनका मत है कि जीव और जगत दोनों ब्रह्मा का चित्त और अचित नामक दो तत्वों से बने हैं। यह अपने आप में सत्य है। उन्होंने ब्रह्म को निर्गुण न मानकर सगुण माना है। अनंत गुणों का भंडार, जिसमें न राग है न द्वेष, वह ईश्वर है। ईश्वर और जीव का संबंध भिन्न है। ईश्वर पूर्ण और अनंत है तथा जीव अपूर्ण और असीमित, फलस्वरूप दोनों में भेद है। ईश्वर का चित्त तत्व जीव के रूप में है, इसलिए दोनों में अभिन्नता है। ईश्वर संपूर्ण है और जीव उसका एक अंश है, इसलिए दोनों में भेदाभेद है। स्पष्ट है कि ब्रह्म में चित्त और अचित दोनों स्थित हैं, जो भिन्न होते हुए भी अभिन्न है। जिस प्रकार पूर्ण से अंश का संबंध होता है, उसी प्रकार चित्त और अचित का ब्रह्म से। वस्तुतः दोनों साथ साथ रहते हैं। उनका विचार है कि एक ही वस्तु दो रूपों में रहती है, एक और अनेक में। दोनों सत्य है, एकता में अनेकता है। वे आत्मा और शरीर दोनों को सत्य मानते हैं और ब्रह्म के चित्त और अचित दोनों से बने हैं, किंतु दोनों सीमाबद्ध हैं। आत्मा को सर्वव्यापी इसलिए कहा जाता है कि वह अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण अचित या भौतिक तत्वों में प्रवेश कर लेता है। उनके अनुसार कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों का महत्व है तथा समीपता से अज्ञान नष्ट हो जाता है और जीव अपने चिद्रूप को जान जाता है, जो ब्रह्म का एक अंश है। उन्होंने ब्रह्म के पांच रूपों की चर्चा की है। पहला परा, दूसरा व्यूह, तीसरा विभव, चौथा अंतर्यामी और पांचवा अर्चा। पहला परा, परा ब्रह्म की सर्वोच्च स्थिति है, जिसमें वह सृष्टा के रूप में है। वह बैकुंठ में निवास करता है, जहाँ देवता और मोक्ष प्राप्त की हुई आत्माएं उसकी सेवा में रहती हैं। दूसरा, व्यूह में ब्रह्मा के तीन रूप होते हैं, वासुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तीसरा, विभव के अंतर्गत ब्रह्मा का अवतार विष्णु अथवा नारायण के रूप में होता है और अपना प्रभाव स्थापित करता है। चौथा, अंतर्यामी स्थिति में ब्रह्मा योग और तप के द्वारा ध्यान में आता है। पांचवा, अर्चा में ब्रह्मा मूर्ति के रूप में रहता है तथा अपनी स्थिति का भान कराता है, अतः ब्रह्मा की अनुभूति भक्ति, ज्ञान और योग से संभव है। आत्मा को ब्रह्म का स्वरूप माना गया है, जिसके पांच वर्ग हैं, नित्य, मुक्त, केवल, मुमुक्षु और आबद्ध। पहला, नित्य का तात्पर्य जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त है। आत्मा नित्य है, नष्ट नहीं हो सकती। मुक्त का अर्थ है बंधन से मुक्त होना, सभी प्रकार के बंधनों से अलग होकर ब्रह्म का स्मरण, ध्यान और पूजन करना। तीसरा, केवल का अभिप्राय है आत्मा का शुद्ध होकर जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाना। चौथा, मुमुक्षु से आत्मा की मोक्ष की स्थिति का भान होता है, जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहती है। पांचवा, आबद्धता का तात्पर्य यह है कि आत्मा विभिन्न प्रकार के बंधनों से जकड़ी हुई है, ऐसी स्थिति में कर्म, ज्ञान, भक्ति और साधना से जीव को सांसारिक मोहमाया से मुक्ति मिलती है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। बाद में माधवाचार्य ने शंकर के अद्वैत और रामानुजम के विशिष्टता अद्वैत के प्रतिकूल पांच नित्य भेदों का वर्णन किया। पहला, ईश्वर और जीवात्मा। दूसरा, ईश्वर और जड़ जगत। तीसरा, जीवात्मा और जगत। चौथा, एक जीवात्मा और दूसरी जीवात्मा तथा पांचवा, एक जड़ पदार्थ और दूसरा जड़ पदार्थ। मध्व के अनुयायियों ने वैशेषिक पद्धति का अनुसरण किया, जिसके अनुसार परमात्मा में अनंत गुण थे तथा जिनके कार्य आठ प्रकार के थे। पहला, सर्जन। दूसरा, पालन। तीसरा, विनाश। चौथा, समस्त भूतों का नियंत्रण। पांचवा, ज्ञान प्रदान करना। छठवा, स्वयं को आलोकित करना। सातवा, भूतों को सांसारिक बंधन से आबद्ध करना तथा आठवा, उनका उद्धार करना। जीवों की संख्या अनंत मानी गई थी, जिनके तीन प्रकार थे। पहला, ब्रह्मत्व प्राप्त करने योग्य। दूसरा, सर्वदा जीवन चक्र में लगे रहने वाले। और तीसरा, अंधकार में रहने वाले। पहले प्रकार में देव, पितृ और ऋषि थे मनुष्य। दूसरे प्रकार में तथा दैत्य, प्रेत और क्रूर लोग तीसरे प्रकार में थे। जगत स्रष्टा परमात्मा समस्त ज्ञान का स्रोत एवं सर्वोत्कृष्ट है, जो विष्णु है। वह सत्पुरुषों को मोक्ष प्रदान करता है। वैष्णव धर्म के अंतर्गत निम्बार्क संप्रदाय का भी विकास हुआ। निम्बार्क तैलंग ब्राह्मण थे, जो बेल्लारी जिले के निम्ब नामक गांव ग्राम के रहने वाले थे। उन्होंने अपने मत के प्रचार के लिए संस्कृत भाषा अपनाई। उनका सिद्धांत वेदांत मत का भेदाभेद अथवा दैता दैत्यवादी है। रामानुज के सिद्धांत को उन्होंने खंडित किया तथा यह माना कि जड़ जगत और जीवात्मा अपनी सत्ता और क्रिया के लिए ईश्वर पर भी निर्भर है, अतः इस युग का आत्मा, परमात्मा और जगत संबंधी संपूर्ण दर्शन तत्व उपनिषदों में विवृत ज्ञान तत्व से प्रभावित है। कृष्ण की उपासना, बल्लभ संप्रदाय, ये हेडलाइन है। हिंदू समाज में विष्णु के अवतार के रूप में कृष्ण का अधिक मान और सम्मान रहा है। कृष्ण के उपासकों का आविर्भाव महाभारत युग से ही प्रारंभ हो चुका था, जो वासुदेव कृष्ण की उपासना करते थे। इसका सम्यक विचार बल्लभाचार्य के नेतृत्व में हुआ। उनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट और माता का नाम यल्लम्मा गरु था। वे तेलुगु प्रदेश के रहने वाले तैलंग ब्राह्मण थे, जो उत्तर में आकर वाराणसी में बस गए थे। वे लोग वैष्णव उपासना और साधना में अनुरक्त थे। बल्लभाचार्य कुछ समय तक काशी, मथुरा और वृंदावन में रहे। उसी समय उनको स्वप्न हुआ कि भगवान कृष्ण श्रीनाथ के रूप में गोवर्धन पर्वत पर तथा उनके सखा गोकुल में उत्पन्न हुए हैं। भगवान की ओर से उनको निर्देश हुआ कि वहां जाकर उन्हें श्रीनाथ जी का परिचारक बनाए, जिससे भगवान पहले की तरह लीला कर सके। इसके बाद बल्लभाचार्य ने श्रीनाथ जी कोष्ट में देव दमन का दर्शन किया और उनके निर्देशानुसार उनका एक देव मंदिर निर्मित करवाया तथा उनकी उपासना प्रारंभ की। इस प्रकार बल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किया तथा उसे कृष्ण रूपी श्रीनाथ जी से संबद्ध किया। उनका वेदांत सिद्धांत उनके पूर्ववर्ती विष्णु स्वामी के सिद्धांत के अनुरूप था। नाभाजी ने भक्तमाल में ज्ञानदेव, नामदेव, त्रिलोचन और बल्लभ का उल्लेख किया है। वल्लभाचार्य ने धर्म संबंधी विभिन्न मतों और सिद्धांतों का अध्ययन करके अपना स्वतंत्र चिंतन किया था। उनकी दार्शनिक पृष्ठभूमि शंकर, रामानुज, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी जैसे विचारकों के मतों से निर्मित हुई थी। विष्णु स्वामी का वेदांत सिद्धांत उपनिषदों से गृहित किया गया है, जिसमें जीवात्मा, जगत और अंतर्यामी आत्मा का उल्लेख है। ब्रह्म से इनका निस्सरण हुआ है। जड़ जगत में चित्त और आनंद रूप उसी के कारण संभव है। समस्त संसार ब्रह्म का स्वरूप है। अविद्या अथवा भ्रम के कारण ब्रह्म का सत्य स्वरूप दृष्टिगत नहीं होता, अव्यक्त रहता है। जीवात्मा का ब्रह्म से अटूट संबंध है तथा वह उसी का एक अंश है। इस प्रकार आत्मा और परमात्मा एक ही है तथा दोनों में समान तत्व है। अंतर केवल इतना ही है कि जीवात्मा में एक अंश अव्यक्त है, उसके अनुसार ब्रह्मा सृष्टि का कर्ता है। वह जगत के कण कण में निहित है तथा सभी वस्तुएं उसी के रूप में है। आत्मा भी उसी का अंश है, अतः दोनों ही अभिन्न है, दोनों ही अविकृत है। यही शुद्धा द्वैत कहा जाता है। जीव दो प्रकार के माने गए हैं, पहला संसारी और दूसरा मुक्त। संसारी जीव वह है जो आवागमन के चक्र में फंसा हुआ है तथा मुक्त जीव वह है जो सांसारिक जीवन चक्र से पृथक है। अतः संसारी जीव इंद्रिय और शरीर से जगत के बंधन में बंधे रहते हैं तथा मुक्त जीव सांसारिक बंधन से अलग रहते हैं। श्री कृष्ण ही परम ब्रह्मा, सच्चिदानंद और पुरुषोत्तम है। उनमें दिव्य गुण है तथा उनकी लीलाएं सनातन है। वैकुंठ में भी वे लीला करते हैं, इसलिए वे परमानंद है। वल्लभाचार्य के अनुसार धर्म के बिना दर्शन अथवा चिंतन का कोई अस्तित्व नहीं, साथ ही दर्शन या चिंतन के न रहने पर धर्म दिशाहीन है। ऐसी स्थिति में ब्रह्म की अभिव्यंजना में धर्म अनुभूति है और दर्शन चिंतन। मोक्ष के विवेचन में उनका मत है कि कर्म, ज्ञान और भक्ति इसके तीन साधन हैं। कर्म और ज्ञान नामक दोनों साधन अत्यंत कठिन और जटिल हैं, केवल भक्ति का साधन सरल और सुबोध है, जिसके माध्यम से व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। अतः भक्ति ही मोक्ष प्राप्ति का साधन और माध्यम है। वल्लभ ने भक्ति के चार प्रकार बताए हैं। पहला प्रवाह पुष्टि भक्ति, दूसरा मर्यादा पुष्टि भक्ति, तीसरा पुष्टि भक्ति तथा चौथा शुद्ध पुष्टि भक्ति। प्रवाह पुष्टि भक्ति के अंतर्गत वे लोग थे जो सांसारिक माया में आबद्ध होकर मैं और मेरा की भावना से भक्ति करते थे। मर्यादा पुष्टि भक्ति को वे मानते थे, अपनाते थे, जो सांसारिक सुखों से अपने मन को हटाकर भगवान के पूजन अर्चन में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। पुष्टि भक्ति के अनुगामी वे थे जो भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए पुनः अनुग्रह प्राप्त कर ज्ञान प्राप्त करते हैं। शुद्ध पुष्टि भक्त को वे लोग चाहते हैं जो मात्र प्रेम के आधार पर भगवान की आराधना करते हैं। अतः भक्ति भगवान के कारण ही संभव है। वल्लभाचार्य के ज्ञान और भक्ति के नेतृत्व में हिंदू समाज को एक नई दिशा मिली। उन्होंने हिंदू धर्म और संस्कृति का पुनरुत्थान किया। आवश्यकता अनुसार समसामयिक समाज और धर्म में वे परिवर्तन भी चाहते थे। उन्होंने अपने ज्ञान और चिंतन के बल पर हिंदू समाज के लिए अभूतपूर्व कार्य किया। सार्वभौम धर्म के आधार पर वे हिंदू समाज में सुधार चाहते थे तथा जाति जैसी रूढ़िवादी संस्था का वे विरोध करते थे। उनके अनुसार जाति व्यवस्था का आधार गुण और कर्म था, जन्म नहीं। शूद्रों को वे निम्न नहीं मानते थे, बल्कि उनकी सेवा वृत्ति के कारण वे भगवान के समीप समझते थे। समन्वय भावना से वे अपने कार्यक्रम को संचालित करते थे तथा सभी वर्गों को संतुष्ट करके वे अग्रसर होते थे। स्त्री और पुरुष में वे कोई भेद नहीं करते थे। उनके अनुसार दोनों में निवास करने वाली आत्मा समान है। प्रेम और भक्ति की भावना से सभी व्यक्तियों का वे उत्थान चाहते थे। उनकी यह मानवतावादी भूमि अत्यंत दृढ़ थी। बंगाल में कृष्ण भक्ति और महाप्रभु चैतन्य। धर्म और भक्ति आंदोलन का प्रसार बंगाल में भी हुआ। वहाँ कृष्ण भक्ति के उन्नायक चैतन्य महाप्रभु थे जो वल्लभाचार्य के समकालीन थे। भक्ति आंदोलन से बंगाल और उड़ीसा अप्लावित हो चुका था। उन्होंने प्रेम के आधार पर कृष्ण पूजा का प्रवर्तन ही नहीं किया, बल्कि भाव और रागात्मक वृत्ति के आधार पर कृष्ण की उपासना का भी प्रचार किया। धर्म सुधारक के रूप में उन्होंने तात्कालिक धार्मिक कुरीतियों और आडम्बरों को समाप्त करने का प्रयास किया। उनका जन्म नवद्वीप के मायापुर गांव के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र था और माता का नाम सची। उनका प्रारंभिक नाम विश्वंभर नाथ मिश्र था, जो बाद में कृष्ण चैतन्य के नाम से ख्यात हुए। उन्होंने 24 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग दिया और भ्रमण के लिए निकल पड़े। पूरी, गया, काशी, मथुरा आदि तीर्थों की उन्होंने यात्रा की। उन्होंने गुजरात की भी यात्रा की। अपने भ्रमण में उन्होंने अनेक हिंदू मुस्लिम संतों से सत्संग भी किया। गीत गाते हुए वे सर्वदा भक्ति में डूबे रहते थे। उनके सर्वोच्च देवता कृष्ण थे, जो प्रेम और अनुराग के आगार थे। चैतन्य के अनुसार जगत में उन्हीं की शक्ति व्याप्त है, जो माया शक्ति के कारण शरीर को ग्रहण करती है। वे ही सबकी आत्मा है। उनमें विलास शक्ति है, जो दो प्रकार की है। एक प्रभाव विलास, जिसके कारण कृष्ण मनचाहा रूप धारण कर लेते हैं और दो दो गोपियों के बीच एक एक कृष्ण घृणा करते हैं। दूसरा विभव विलास, जिसके फलस्वरूप कृष्ण चतुर्व्यूह या वासुदेव संकर्षण आदि का स्वरूप धारण करते हैं। उनमें सत्व, रज और तम तीनों गुण है, जो विष्णु, ब्रह्म और शिव के परिचायक है। गोलोक में उनकी लीलाएं शाश्वत रूप में चला करती हैं। कृष्ण में तीन शक्तियां हैं। पहली आंतरिक कोष्ठ में चित्त शक्ति, दूसरी ब्रह्मा कोष्ठ में माया शक्ति, तथा तीसरी जीव शक्ति। उनमें आह्लाद शक्ति भी है, जो पूर्णतः प्रेम से ओतप्रोत है। प्रेम की पराकाष्ठा राधा है, जहाँ प्रेम राधा में प्रतिष्ठित है। इसलिए चैतन्य प्रेम के वशभूत थे और उसी में तल्लीन रहा करते थे। प्रेम और भक्ति उनके प्रधान आधार थे। वैसे उनकी भक्ति साधना के 9 आधार थे। एकेश्वरवाद कोष्ठ में हरि और कृष्ण के अलावा कोई दूसरा नहीं। आदिशक्ति कोष्ठ में श्री कृष्ण। तीसरा रस सागर कोष्ठ में कृष्ण रस के समुद्र अर्थात प्रेम के आगाध सागर हैं। जीव आत्मा प्रकृति से आबद्ध आत्मा, प्रकृति के बंधन से मुक्ति, हरि का अचिंत्य भेदाभेद प्रकाश और भक्ति। इस प्रकार चैतन्य की भगवान कृष्ण कृष्ण में अपार भक्ति थी। चैतन्य महाप्रभु के अनेक अनुयायी हो गए, जो मस्तक पर दो सफेद लंबी रेखाएं खींचते तथा तुलसी की माला पहनते थे। वे लोग अपने गुरुओं को देव तुल्य मानते थे। बंगाल में कृष्ण को आराध्य देव मानकर प्रेम और राग का स्वर फूकने वाले चैतन्य महाप्रभु ही थे। महाराष्ट्र में वैष्णव धर्म हेडलाइन है। पूर्व मध्य युग में वैष्णव धर्म का प्रचार और प्रसार महाराष्ट्र में भी हुआ। इसका प्रधान केंद्र भैमरथी नदी के तट पर बसा पंढरपुर नामक नगर था, जहां बिठोवा का मंदिर स्थित है। भगवान विष्णु के लिए विठल शब्द का व्यवहार किया गया है। उपर्युक्त मंदिर 13वीं सदी के मध्य में ख्यात हो चुका था। एक ताम्रपत्र से विदित होता है कि देवगिरी के यादव राजवंशी कृष्ण के सेनापति राष्ट्रीय मल्लिशेट्टी ने बेलगांव जिले में भैमरथी के तट पर स्थित पौंडरिक क्षेत्र में विष्णु के निमित्त गांव दान में दिया था। इस प्रकार स्पष्ट है कि पौंडरिक क्षेत्र पंढरी या पंढरपुर था, जहां विष्णु के लिए गांव दान में प्रदान किया गया था। वे विष्णु विठल या बिठोवा ही थे। एक अन्य अभिलेख उल्लिखित है कि केशव के पुत्र भानु ने पांडुरंगपुर में अप्तोर्याम नामक यज्ञ संपन्न किया था। उस यज्ञ में विठल तथा अन्य देवताओं के साथ अनेक लोग प्रसन्न किए गए थे। विष्णु के कारण ही पांडुरंगपुर नामक विख्यात हुआ था। और जब बिठोवा का मन बढ़ा, तब पांडुरंग नामक विठल हो गया। विठल संप्रदाय एक स्वतंत्र मत के रूप में विकसित हुआ, जिसमें कृष्ण की आराधना की जाती थी। इस संप्रदाय के प्रवर्तक पुंडलिक थे, जिन्होंने कृष्ण रुक्मणी के मंदिर का निर्माण किया था। कृष्ण को विठल या बिठोवा कहा गया तथा रुक्मणी को रुक्माई या रुक्माबाई। अतः महाराष्ट्र में कृष्ण पूजन के रूप में वैष्णव धर्म का विस्तार हुआ, जिसके अनुयायियों में उच्च और निम्न सभी वर्गों के लोग सम्मिलित थे। इस संप्रदाय के संत प्राय शूद्र थे, इसलिए इसके अनुयायियों में अधिक संख्या निम्न जातियों की थी। नामदेव जन्म 1270 ईस्वी और तुकाराम मृत्यु 1649 ईस्वी इससे ही संत थे, जिन्होंने भक्ति आंदोलन को तीव्रता प्रदान की। नामदेव ने मराठी के अतिरिक्त हिंदी में भी भक्तिपूर्ण गीत लिखे। उनका प्रधान मत हृदय शुद्धि, प्रभु के चरणों में अर्पण, ध्यान, व्रत, उपवास आदि से संबद्ध था। उनके अनुसार ब्रह्मा अथवा परमात्मा ही प्रधान है, जो सर्वत्र व्याप्त है। मनुष्य के अंतस और ब्रह्म में यह वह स्थिति है। मोक्ष के लिए भक्ति का मार्ग श्रेयस्कर है। सत्संग, तीर्थयात्रा, ध्यान और पूजन से ब्रह्म का अनुभव होता है। तुकाराम और उनके सात पूर्वज बिठोवा के सच्चे उपासक थे। उनके प्रथम पूर्वज विश्वंभर ने नगर में ही बिठोवा और रुक्मणी की प्रतिमा स्थापित की थी। कालांतर में तुकाराम ने अपनी सारी संपत्ति त्याग कर अपना शेष जीवन बिठोवा के अर्चन पूजन में व्यतीत किया। वे भजनों के माध्यम से बिठोवा के गुण गाते तथा उनकी उपासना में तल्लीन रहा करते थे। उनके अनुयायी उनके गीत गाते हुए सर्वत्र घुमा करते थे। अतः उनकी प्रसिद्धि इतनी फैली कि शिवाजी उनके भजन सुनने के लिए आतुर रहा करते थे। वे भगवत प्रेम को ही उपासना और भक्ति का प्रधान मार्ग बताते थे। पंजाब में भक्ति साधना और गुरु नानक। पंजाब में सिख धर्म का स्थापन प्रवर्तन तथा भक्ति और साधना का आंदोलन गुरु नानक ने प्रारंभ किया एवं उनकी भक्ति माधुरी से समस्त पंजाब को झंकृत कर दिया। हिंदू धर्म की संकीर्णता और कठोरता से उस युग का समान त्रस्त था। हिंदू धर्म की संकीर्णता और कठोरता से उस युग का समाज संत्रस्त था। इसके साथ ही मुस्लिम धर्म और सभ्यता की आतंकवादी और प्रसारवादी नीति भी तात्कालिक जनता के लिए कम भयंकर नहीं थी। ऐसी ही संक्रमण काल में गुरु नानक का धर्म और समाज सुधारक के रूप में उदय पंजाब की जनता के लिए एक नवीन उत्साह और मार्ग निर्देश था। नानक का जन्म एक क्षत्रिय परिवार में कीर्तन पूर्णिमा के दिन नवंबर 1469 में पंजाब के गुजरावाला जिला अंतर्गत रावी नदी के तट पर स्थित तालबंदी नामक ग्राम में हुआ था। उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी की शिक्षा ग्रहण की थी, किंतु उनका मन अध्ययन में नहीं लगता था। अतः उन्हें कृषि और व्यापार आदि का कार्य सौंपा गया, लेकिन उनका इन कार्यों में भी मन नहीं लगा। वास्तव में उनका मन भक्ति, एकांत साधना और ज्ञान प्राप्ति में तल्लीन करता था। परिवार के व्यवसाय और व्यापारिक कार्यों से वे विरक्त रहा करते थे। 18 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह कर दिया गया, जिससे उन्हें दो पुत्र उत्पन्न हुए। घर गृहस्थी में भी उनका चित्त नहीं लगा और किसी समय बाद वे गृह का त्याग करके ज्ञान की खोज में निकल पड़े। भारत भ्रमण के साथ साथ उन्होंने अफगानिस्तान, मिस्र, तुर्किस्तान, लंका, चीन, बर्मा आदि दूसरे देशों की भी यात्रा की। तदनंतर करतारपुर में रहकर उन्होंने अपनी गीतमय वाणी से साधारण जन को कृतकृत्य किया। 1539 ईस्वी में उनका देहावसान हुआ। उनकी अंतिम क्रिया को लेकर उनके हिंदू और मुस्लिम शिष्यों के बीच विवाद खड़ा हो गया। फलस्वरूप उनके शिष्यों को पार्थिव शरीर के स्थान पर पुष्प ही मिला। उनके हिंदू अनुयायियों ने मंदिर और मुसलमान अनुयायियों ने मकबरा बनवाया, जो कुछ दिन बाद ही रावी नदी की उफनती बाढ़ में समा गए। नानक की दृष्टि में सारी पृथ्वी एक पावन स्थल है और उसमें रहने वाले सभी समान हैं। सत्य से प्रेम करने वाला ही पवित्र है। भगवान अथवा ब्रह्म का रूप सत्य है। मनुष्य सत्य का अनुगमन करके उस ब्रह्म तक पहुंच सकता है। पाखंड आडंबर युक्त धर्म निरर्थक है। ऐसे धर्म से मानव मात्र के बीच अंतर ही बढ़ता है। कबीर की तरह उन्होंने हिंदुओं के संध्या पूजन और पाषाण पूजन का विरोध किया है। इसी प्रकार मुसलमानों के लिए उनका कथन है कि दया को मस्जिद समझो, उसमें सत्य की फर्श बिछाओ, न्याय और सच्चाई को कुरान बनाओ, नम्रता को सुन्नत बनाओ, सौजन्य को रोजा मानो, तब तुम मुसलमान कहे जाओगे। इसी तरह उन्होंने हिंदुओं को संबोधित किया कि मैंने चारों वेद पढ़े हैं, 68 तीर्थों में स्नान किया है, वनों और जंगलों में निवास किया है और ऊपर और नीचे के सातों संसार का ध्यान किया है, तथा मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वही व्यक्ति अपने धर्म के प्रति निष्ठावान है जो ईश्वर से डरता है और अच्छे कर्म करता है। उन्होंने समस्त मानव को सच्चाई और नैतिकता का मार्ग अपनाने के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने प्रवृत्ति मार्ग की व्याख्या की तथा निवृत्ति मार्ग की आलोचना की। हिंदू, जैन, मुसलमान, योगी और मुल्ला के आडंबर युग धर्म का उन्होंने विरोध किया है। धर्म के ब्रह्म आचारों और कार्यक्रमों की उन्होंने भर्त्सना की।
उन्होंने अपने धर्म के सिद्धांतों का मानवतावादी धरातल पर दार्शनिक प्रतिपादन किया है। ब्रह्म, जगत, आत्मा और माया की उन्होंने अपने ढंग से व्याख्या की है। उनका ब्रह्म अथवा परमात्मा एक ईश्वरवाद का प्रतीक है। यही नहीं, वह अकाल, अजन्मा और स्वयंभू है। वह अलख, अगम, अपार और इंद्रियों से परे है। उसका न कोई काल है न कर्म। वह जाति अजाति से भी दूर है। वह निर्गुण
सगुण सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान अंतर्यामी पतित पावन कृपालु सखा सहायक माता पिता स्वामी सभी कुछ है। उनका ब्रह्म अवतार के सर्वथा भिन्न है और स्वतंत्र है। उनके अनुसार जगत की दृष्टि सृष्टि परमात्मा ने कृपा पूर्वक की जो अलख और अगोचर है। उस समय सर्वत्र अंधकार था, पृथ्वी आकाश सूर्य चंद्रमा कुछ भी नहीं था, केवल शून्य था। तदंतर सृष्टि हुई। माया को उन्होंने भ्रम माना है जो जंगल के रूप में है। एक स्थल पर माया के लिए उनका कथन है कि वह बुरी सास है जो जीव रूपी वधु को अपने गृह अर्थात आत्म सुख में नहीं रहने देती तथा परमात्मा रूपी प्रियतम से जीव रूपी वधु को मिलने नहीं देती। उनका मत है कि जीव की उत्पत्ति परमात्मा से हुई है। आत्मा अमर है, अजर है। शरीर नष्ट हो जाता है किंतु आत्मा नष्ट नहीं होती। गीता के आधार पर उन्होंने आत्मा का विश्लेषण किया है तथा उसी तरह आत्मा की विशेषता दर्शित की है। गुरु नानक ने मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति को साधन माना है। कर्म ज्ञान और योग के मार्ग का उन्होंने त्याग किया है। उनके अनुसार सरल और सुबोध भक्ति का मार्ग ही श्रेयस्कर है। भक्ति को अंधविश्वास अंधश्रद्धा अश्रद्धा और भगवान के विभिन्न नामों से अलग माना है। उनकी भक्ति में सेवा भाव और प्रेम भाव है। अतः ऊपर के विश्लेषण को संपीड़ित करके कहा जा सकता है कि वैष्णव धर्म का प्रसार भारत में भक्ति और ज्ञान के मार्ग को प्रशस्त करने के उद्देश्य से हुआ था। उसमें विष्णु के विभिन्न अवतारों की उपासना और साधना भी सन्निविष्ट थी। यह सही है कि पूर्ववर्ती काल में वासुदेव कृष्ण के पूजने का अधिक विस्तार हुआ, किंतु मध्य युग में कृष्णोपासक और राम उपासक दोनों संप्रदायों का समानांतर गति से प्रसार हुआ। उत्तर भारत में इसका समस्त श्रेय रामोपासक रामानंद और तुलसीदास तथा कृष्णोपासक वल्लभ सूरदास और मीराबाई को है। बंगाल और उड़ीसा में चैतन्य और उनके अनुयायियों ने कृष्ण की लीलाओं का प्रचार तथा प्रेम तत्वों का प्रतिपादन किया। पंजाब में गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन कर आशा और विश्वास का नया दीप जलाया, भक्ति का नया स्वरूप खींचा। राजस्थान में मीराबाई ने कृष्ण भक्ति के माध्यम से नवीन उत्साह उत्पन्न किया। महाराष्ट्र में नामदेव और तुकाराम के प्रयास से कृष्ण की उपासना घर घर फैली। परवर्ती उपासकों और चिंतकों ने जनभाषा को अभिव्यक्ति का प्रधान आधार मानकर अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाया, जिससे साधारण जनता भी आत्मा परमात्मा और ब्रह्मा संबंधी गुण विषयों को समझ सकने में समर्थ हुई। दूसरा, शैव धर्म का उद्भव और उत्कर्ष। हेडलाइन है, शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है गया तथा इस धर्म के भक्तों और अनुयायियों को शैव धर्मावलंबियों के प्रधान इष्ट देव भगवान शिव हैं। यह उत्तर वैदिक कालीन नाम है। विष्णु की तरह उनके अवतारों की कल्पना नहीं की गई, न ही उनका विकास अवतारवाद के आधार पर हुआ, बल्कि उनका विकास रुद्र से शिवम के रूप में हुआ। शिव की प्राचीनता प्रागैतिहासिक है। नवपाषाण युग की अनेक जातियों में भूमि की उर्वरता के लिए लिंग पूजा की जाती थी। गुड्डीमल्लम और भीटा से ऐसे लिंग प्राप्त हुए हैं जिन पर मनुष्य की आकृति में देवता अंकित है। कुछ लोगों ने उनकी प्राचीनता की खोज शैव सभ्यता में की। यह कहा कि वहां से प्राप्त मुहरों पर श्रृंगधारी मानवाकार बैठे हुए देवता पशुपत शिव हैं और उनका प्रतीक लिंग भी चित्रित है जिसके चारों ओर शेर हाथी और पशु बैठे हैं। शिव का एक दूसरा चित्र ताम्रपत्र पर मिला है जिसमें वह यात्री के रूप में दर्शित हैं तथा उनके सम्मुख दो सर्प हैं और उनके गले में सर्प की माला। सिंधु सभ्यता के अवशेषों में छोटे छोटे अनेक लिंग मिले हैं। अगर इस मत को ठीक मान लिया जाए तो शैव धर्म विश्व का प्राचीनतम धर्म हो जाएगा, किंतु तारतम्य और श्रृंखला के अभाव में यह मत स्वीकार करना तर्कसंगत नहीं। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नाम का व्यवहार हुआ है जो अपनी कठोरता और रुद्रता के लिए ख्यात है। वे अपनी भयंकरता और विनाशक शक्ति से मनुष्य और पशु दोनों को विनष्ट कर देते हैं। उनकी क्रुद्ध और प्रलयकारी शक्ति से महामारियां फैल जाती तथा घर उजड़ जाते हैं। अतः उनकी विध्वंसकारी शक्ति से बचने के लिए ऋग्वैदिक आर्यों ने उनकी स्तुति और वंदना प्रारंभ की, जिससे वे प्रसन्न रहें और अपनी विनाशक शक्ति से मनुष्य को कष्ट न दे। ऋग्वेद के विवरण अनुसार उनके द्वारा फेंके गए बाण तीव्र रूप से स्वर्ग और पृथ्वी पर गिरते हैं। वे अपने अस्त्र से मनुष्य और गाय को हत करते हैं। अतः ऋषियों ने उनकी प्रार्थना की कि वे अपने आयुधों को दूर रखें तथा द्विपदों और चतुष्पदों की रक्षा करें। इस प्रार्थना द्वारा रुद्र के विनाश से लोग बच जाते थे। फलस्वरूप वे उन्हें पशुपति अथवा पशुओं का रक्षक कहते थे। ऋग्वेद से विदित होता है कि उनकी उपाधि पशुपति। रुष्ट होने पर वे महामारियां फैला देते थे। अतः उनसे बचने के लिए लोग उनकी पूजा करते तथा आशा करते थे कि लोगों की विभिन्न रोगों से मुक्ति मिलेगी। रुद्र के पास सहस्त्रों औषधियां थी जिनके कारण रोगों से छुटकारा पाना सरल था। उत्तर वैदिक काल में रुद्र का विकास अधिक तीव्र गति से हुआ। उन्हें शत्रु दृत्य और शिवांतनु कहा गया है और साथ ही पर्वत पर शयन करने के कारण उन्हें गिरीश और गिरित्र नाम से अभिहित किया गया। उन्हें पशुओं का स्वामी कहा गया जो पशुपति के रूप में उनका विशिष्ट नाम हो गया। धीरे धीरे रुद्र की व्यापकता बढ़ती गई तथा समाज में उनका विस्तार होता गया। दिशाओं के पति के रूप में भी उनका स्थान बनता गया। कपर्दिन की संज्ञा देकर उन्हें अग्नि से अभिन्न माना गया। उनकी उग्रता जब शांत हो जाती थी तब उन्हें शंभु शंकर और शिव नामों से अभिहित किया जाता था। चर्म धारण करने के कारण वे कृतिवासन के रूप में ज्ञात थे। उन्हें सर्वभव भी कहा गया। संभवतः निषाद आदि अनारियों से संबद्ध होने के कारण ही उनमें चर्म परिधान धारण करने वाला माना गया था। रुद्र से अनेक रुद्रों को अद्भुत माना गया था जो उसकी व्यापकता व्यंजित करता है। इसलिए इन रुद्रों को गणपति कर्मकार कुंभकार रथकार तक्षक और निषादों के पति के रूप में स्वीकार किया गया। लगता है उपर्युक्त वर्गों और अनार्य जातियों के वे उपास्य और आराध्य देव थे। इसी युग में आर्य रुद्र का आर्यतर शिव के साथ समीकरण हुआ। सतरुद्रीय से स्पष्ट होता है कि रुद्र अथवा शिव मनुष्यों की बस्ती से दूर रहते थे। वे चारों डाकुओं और ब्रातियों के पूज्य देवता थे। यजुर्वेद में वर्णित है कि शिव का संबंध आर्य संस्कृति से नहीं केवल अनार्य लोगों से था। गणपति तक्षा निषाद रूप के गण आदि ऐसे पर्याप्त पर्याय रुद्र के लिए व्यवहारित हुए जो उसके अनार्य जातियों से समीपता दृढ़ करते हैं। अथर्ववेद के विवरण से यह स्पष्ट होता है कि देवताओं ने महादेव को विभिन्न दिशाओं के ब्रात्यों का स्वामी नियुक्त किया था। समाज में रुद्र की महत्ता विशिष्टता और उत्कृष्टता बढ़ती गई। द्विपद और चतुष्पद के शासक के रूप में उनको भी स्वीकार किया गया। उनका क्षेत्र अत्यंत विस्तृत था तथा उनका आयाम बहुत बड़ा था। अथर्ववेद और शतपथ ब्राह्मण में उन्हें सहस्त्राक्ष कहा गया था। निकटवर्ती और दूरवर्ती समस्त पदार्थ उन्हीं के थे। साथ ही वे समग्र धनुर्धरों में श्रेष्ठ थे। उनका आघात सभी देवताओं और मनुष्यों को आहत कर सकता था। अतः उनके द्वारा अपनी रक्षा के लिए उनकी आराधना की जाती थी। रुद्र सर्वत्र था। जल अग्नि औषधि वनस्पति और समस्त भूतों में आकाश और अंतरिक्ष का वह स्वामी था। वह भूतपति और पशुपति था। पशुपति के रूप में उसके अधीन 5 प्रकार के पशु थे। गौ अश्व मनुष्य अजा और भेड़। उनकी आराधना करते हुए कहा गया कि वे विनाश विष और अग्नि से रक्षा करें। अथर्ववेद में उन्हें भव स्वर्ग और पृथ्वी का इस कहा गया तथा भव सर्व और रुद्र के बाण को सदाशिव बनने के लिए कामना की गई। उनकी उपस्थिति आकाश पृथ्वी अंतरिक्ष और दिशाओं में सर्वत्र मानी गई। वे भव के रूप में पूर्वी प्रदेश के अंतर्वर्ती स्थान में, सर्व के रूप में दक्षिण में, पशुपति के रूप में पश्चिम में, उग्र के रूप में उत्तर में, रुद्र के रूप में भूतल में, महादेव के रूप में ऊपर और ईशान के रूप में अंतरिक्ष में व्याप्त थे। अतः संपूर्ण सृष्टि में उनका विस्तार था तथा समस्त जगत उनके निर्देशों से संचालित था। ब्राह्मण ग्रंथ में उन्हें उषा का पुत्र बताया गया है। प्रजापति द्वारा रखे गए उनके 8 नामों में से एक नाम असनी भी था। उनके 8 नामों में से रुद्र सर्व उग्र और असनी ये 4 नाम विध्वंसकारी और विनाशकारी थे तथा 4 नाम भव पशुपति महादेव और ईशान कल्याणकारी। यद्यपि समस्त देवगण उनकी रुद्रता से भव भयग्रस्त थे। सूत्र ग्रंथों में भी रुद्र की अपनी अलग विशिष्टता है तथा उनके विवरण से यह प्रमाणित होता है कि उनका अनार्य तत्व पर प्रभाव था। उनको प्रसन्न करने के लिए पशु बलि की व्यवस्था की गई थी जो
ग्राम की सीमा के बाहर आयोजित की जाती थी तथा अवशिष्ट ग्राम में नहीं लाए जाते थे। उनके 12 नामों के साथ उनकी स्तुति की जाती थी। उन 12 नामों में असनी को छोड़कर पूर्ववर्ती 7 नाम थे तथा 5 और नाम संयुक्त किए गए थे, जो इस प्रकार है: हर, मृड, शिव, भीम और शंकर। उनके साथ इंद्राणी, रुद्राणी, सर्वाणी और भवाणी नामक 4 पत्नियां भी जोड़ दी गई और उनके लिए भी आहुति की व्यवस्था की गई। मार्गों को पार करते समय, चतुष्पथ पर पहुंचते समय, नदी पार करते समय, नाव पर आरूढ़ होते समय, पर्वत, शमशान और गौशाला जैसे स्थानों के मध्य से जाते समय अपने सुरक्षार्थ रुद्र की उपासना की जाती तथा मंत्र का जप किया जाता था। स्पष्ट है रुद्र एक विशिष्ट देवता के रूप में विकसित हो रहे थे, जिनकी आराधना समाज में निरंतर की जाती थी। नदी, पर्वत, प्रदेश, मैदान, शमशान, गौशाला आदि स्थानों से जाते समय उनका स्मरण किया जाता था। अतः वे विभिन्न प्रकृतियों के देवता थे, उनका जिनका प्रसन्न रहना मनुष्यों के लिए आवश्यक था। श्वेताश्वर, अथर्वशीरस जैसे उपनिषदों में जीव शिव के दर्शन और ज्ञान तत्व की मीमांसा की गई है तथा उनका संबंध ईश्वर, जीव और प्रकृति तत्वों से स्थापित किया गया है। तैतरीय संहिता में उनकी एकता शिव से स्थापित की गई है, उन्हें सर्वोच्च देव का पद प्राप्त था। इस युग तक रुद्र शिव की प्रतिष्ठा बढ़ गई थी, किंतु उनकी पत्नी का कोई उल्लेख नहीं मिलता। किन उपनिषद में उमा का नाम अवश्य मिलता है, किंतु वह रुद्र की पत्नी नहीं है, वह हिमवान की पुत्री हेमवती है। श्वेताश्वर उपनिषद से सिद्ध होता है कि श्वेताश्वर ऋषि भक्ति के वशीभूत होकर रुद्र की शरण में गए थे। महाभारत में शिव का उल्लेख सर्वोच्च और शक्तिशाली देवता के रूप में हुआ, जिनसे पशुपत अस्त्र प्राप्त करने के लिए अर्जुन को हिमालय जाना पड़ा था। वहां उन्होंने किरात के वेश में रह रहे शिव की वास्तविकता को समझे बिना उनसे युद्ध किया, किंतु वे परास्त होकर भूमि पर पड़ गए। इसके बाद उन्होंने मित्रिका की वेदी बनाकर शिव की आराधना की और देखा कि जो पुष्प उन्होंने अर्पित किए थे वह किरात के सिर पर रखा हुआ है। तब उन्होंने शिव को पहचान को कर अपने को उनके चरणों में शरणागत किया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अर्जुन को पशुपत अस्त्र प्रदान किया। भगवान शिव ने इसी प्रकार पशुपत अस्त्र प्राप्त करने की कथा उपरिलिखित वन पर्व के अतिरिक्त द्रोण पर्व में भी है, जब अर्जुन और कृष्ण स्वप्नावस्था में हिमालय जाते हैं और शंकर भगवान की स्तुति करके पशुपत अस्त्र की कामना करते हैं। शिव उन्हें एक सरोवर तक जाने का निर्देश देते हैं जहाँ पशुपत अस्त्र है। वहां पहुंचने पर उन्हें सरोवर में 2 विषधर सर्प दिखाई देते हैं, किंतु देखते ही वे धनुष बाण बन जाते हैं जिन्हें अर्जुन उठा लेते हैं। महाभारत के ही सौप्तिक पर्व में विवृत है कि शिव की कृपा से अश्वत्थामा को एक खड़ग मिला था जिसमें उन्होंने पांडव पुत्रों का वध कर डाला था। पुत्र प्राप्ति के लिए कृष्ण ने स्वयं शिव की आराधना की थी। तदनंतर भगवान शिव ने अपनी पत्नी उमा के साथ प्रकट होकर कृष्ण को मनोवांछित वर प्रदान किया था। लिंग पूजा का जो उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है उसका शैव धर्म से संबद्ध होना अत्यंत विवादग्रस्त है। ऋग्वेद में शिष्ण पूजकों को घृणा की दृष्टि से देखा गया है, पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि तात्कालिक समाज में इसका प्रचलन था, चाहे वह अनारियों के ही समाज में क्यों न रहा हो। किंतु सायण ने शब्दोत्पत्ति करते हुए भाष्य किया है कि कृष्ण देव का अर्थ होता है वे व्यक्ति जो कृष्ण से घृणा करें। दूसरे शब्दों में ऐसे लोगों को अब्रह्मचारी कहा जा सकता है। ऐसी स्थिति में कृष्ण देव लिंग पूजा का परिचायक नहीं। लिंगोपासना का संकेत महाभारत के अनुशासन पर्व मिलता है, जो संभवतः अनार्य प्रभाव कारण था। पाणिनि पर भाष्य करते हुए पंतजलि ने शिव की मूर्ति बनाकर पूजा करने की बात कही है, उसने कृष्ण पूजा का कोई भी संकेत नहीं दिया है। शक शासक मूग की मुद्राओं पर त्रिशूलधारी शिव अंकित हैं। पहला नरेश गुंडफर्न के कुछ सिक्कों पर त्रिशूल और जटाधारी शिव का चित्र उत्कीर्ण है। कुषाण शासक भीम कथा फिसस के सिक्कों के पृष्ठ भाग पर नंदी और त्रिशूलग्राही चर्म धारण किए हुए शिव की आकृति उत्कीर्ण है। लिंग की कोई आकृति नहीं मिलती। हुवेसी की मुद्राओं पर शिवलिंग अंकित है। गुप्त काल में शैव धर्म का उत्कर्ष तीव्र गति से हुआ। गुप्त सम्राटों के वैष्णव धर्मावलंबी होने के बाद भी उनका धर्म सहिष्णुता की भावना से शैव धर्म का समाज में यथोचित प्रसार हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का मंत्री वीरसेन शैव धर्मावलंबी था। कुमारगुप्त प्रथम के मंत्री पृथ्वीसेन ने शिव मंदिर को दान प्रदान किया था, जिसका उल्लेख करमदंडा अभिलेख में हुआ है। स्कंदगुप्त का अधीनस्थ सामंत महाराज हस्तिन शिवोपासक था। स्कंदगुप्त के भैल प्रकार के सिक्के उसकी शैव धर्म के प्रति आस्था व्यक्त करते हैं। वस्तुतः शैव धर्म के इस प्रसार का प्रारंभ शुंग सातवाहन काल से हुआ, जो गुप्त काल में चरम परिणति पर पहुंचा। उस युग में अनेक शैव मंदिरों के निर्माण के साथ शिव की महिमा से संबंधित उत्कृष्ट साहित्य की भी रचना हुई। साहित्यिक रचना के क्षेत्र में कालिदास का शीर्षस्थ स्थान है, जिन्होंने कुमार संभव नामक महाकाव्य की रचना करके शैव धर्म की प्रतिष्ठा में महत्वपूर्ण योग प्रदान किया। कुमार संभव में शिव के चरित्र, महिमा और गुणों का वर्णन है। इस कृति के अतिरिक्त महाकवि की अन्य कृतियों में शिव के विभिन्न स्वरूपों, मतों और सिद्धांतों का उल्लेख है। महेश्वर, ईश्वर, परमेश्वर, अष्टमूर्ति, वृष भद्वज, शूलभूत, पशुपति, त्रयंबक, त्रिनेत्र, अस्थाणु, अयुग्मनेत्र, नीलकंठ, नीललोहित, स्थिकंठ, चंडेश्वर, विश्वेश्वर, शंभु, हरगिरीश, महाकाल, भूतेश्वर, शिव, शंकर, पिनाकी, बुराड़ी आदि नामों से शिव का उल्लेख हुआ है। कालिदास के साहित्य में गोकर्ण के शिव, काशी के विश्वनाथ और उज्जैन महाकाल ज्योतिर्लिंग का संकेत मिलता है। जल पावक क्षिति गगन समीर, सूर्य चंद्र अर्थात पृथ्वी की संयुक्तता से शिव की अष्टमूर्ति का निर्माण होता था। वे जगत स्रष्टा के रूप में पूजित थे तथा उन्हें सृष्टि भी कहा गया। अष्टमूर्ति के 8 स्पष्ट रूप थे, रुद्र, भव, सर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव। अभिज्ञान शकुंतला में शिव के अष्ट रूप की इस प्रकार व्याख्या की गई है, जल अग्नि होता, सूर्य चंद्र आकाश पृथ्वी और वायु। यह माना गया कि ब्रह्म जगत के स्रष्टा है, विष्णु पालक और शिव संहारक। कालिदास द्वारा शकुंतलम का प्रारंभ और अंत शिव की स्तुति से किया गया है। पुराणों में उनकी अनुपम महिमा निरूपित की गई है, उन्हें देवों में श्रेष्ठ महादेव कहा गया है। स्कंद पुराण में पशुपति, सर्वज्ञ ईश्वर तथा सब तत्वों के मूल तत्व तथा स्नातन भगवान रुद्र ने कहा है कि सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से भी पहले मैं ही अकेला ईश्वर था, वर्तमान में भी मैं ही ईश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही ईश्वर रहूंगा, मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। उनकी इस प्रतिष्ठा और महानता का कारण यह था कि उन्होंने अपने ईश्वर्य से देवताओं को, शक्ति से असुरों को, ज्ञान से मुनियों को तथा योग से प्राणियों को पराजित किया था। पुराणों में उनको त्रयंबक, भव, सर्व, महादेव, ईशान, सुलपाड़ी, शंकर, सूली, त्रिशूलधारी, पिनाकी, नील लोहित, नीलग्रीव, सितिकंठ, सहस्त्राक्ष, वृष भद्वज, पशुपति, अतिभैरव आदि विभिन्न नामों से अभिहित किया गया है। अपने कार्यों को संपन्न करने की उनमें अद्भुत क्षमता थी। दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने के लिए उन्होंने प्रज्वलित अग्नि के समान वीरभद्र को अपने मुख से उत्पन्न किया था। शिव के इस उग्र रूप के विपरीत उनका लोक कल्याण का भी रूप है, जिसमें वे विष का पान करते और नीलकंठ कहे जाते हैं। पुराणों में शिष्ण पूजा का भी उल्लेख है। एक बार जब ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता का विवाद चल रहा था, तब उन्होंने दीप्तिमान अव्यक्त लिंग देखा, किंतु लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में हुआ है, जिसके अनुसार त्रिपुर के दग्ध होने के समय याणासुर ने शिवलिंग को सिर पर रखकर शिव की पूजा की थी। मथुरा के एक स्तंभ लेख से विदित होता है कि उपमति मितेश्वर और कपिलेश्वर नामक शैव आचार्यों के सम्मान में शिवलिंगों का स्थापन किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि शिवलिंग की पूजा का प्रसार समाज में अत्यंत परवर्ती काल में हुआ, संभवतः गुप्त युग में। पाशुपत संप्रदाय का गुप्त काल में अत्यधिक विकास हुआ। यद्यपि इस संप्रदाय के अतिरिक्त वीर शैव, प्रत्यभिज्ञा आदि कई संप्रदाय थे, तथापि पाशुपत मत के मानने वाले लोग तात्कालिक समाज में अधिक हुए। इस संप्रदाय के सिद्धांत के 3 अंग हैं, पहला पति, दूसरा व्यक्ति आत्मा एवं पशु और तीसरा पास। इसके अतिरिक्त 4 पद हैं, पहला विद्या या ज्ञान, दूसरा क्रिया अथवा कर्म, तीसरा योग और चौथा चर्या अथवा आचार। पशुपत
शक्ति के रूप में भगवान शिव की उपासना समाज में प्रचलित थी। पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए अर्जुन की कठिन तपस्या का उल्लेख कालिदास ने भी किया है। अर्धनारीश्वर के रूप में भी शिव की कल्पना की गई है। शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां गुप्त युग में और उसके परवर्ती युग में विशेष रूप से कोरी गई। इसी संयोग का वर्णन कालिदास ने कुमार संभव में अत्यंत यत्नपूर्ण किया है। शिव और पार्वती का परस्पर इतना तादात्म्य हुआ कि दोनों की सन्निहित मूर्ति अर्धनारीश्वर के रूप में समाज में चल पड़ी, जिसके अंतर्गत पुरुष और नारी को एक ही शरीर के भाग के रूप में स्वीकार किया गया तथा यह अभिव्यक्त किया गया कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं। इसलिए स्त्री अर्धांगनी कही जाती है। वस्तुतः स्त्री और पुरुष दोनों संयुक्त होकर सृष्टि करते हैं। फलतः शिव और पार्वती युक्त अर्धांगनी की मूर्ति इसी कल्पना पर आधारित थी, जिसमें अर्धांग रूप में शिव बाई और अर्धांगनी रूप में पार्वती दाई ओर दर्शित है। अतः इस काल में अर्धनारीश्वर की अनेकानेक मूर्तियां गढ़ी गई, जो तदयुगीन शैव और चाक्य दर्शन की समन्वित प्रतीक है। शिव की पूजा के साथ साथ शक्ति की भी पूजा समाज में बढ़ी तथा लोग शक्ति के भी उपासक होने लगे। अर्धनारीश्वर की मूर्तियां प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। वैशाली की एक मुहर भी अर्धनारीश्वर की मूर्ति रूपायित की गई है, जो अत्यंत सजीव और अभिराम है। कुर्कीहार से प्राप्त अष्ट धातु की मूर्ति इसी प्रकार सुंदर और आकर्षक है। प्रतिहार अभिलेख में भी अर्धनारीश्वर का उल्लेख हुआ। सेन अभिलेख में अर्धनारीश्वर को नृत्य करते हुए चित्रित किया गया है। त्रिमूर्ति के अंतर्गत ब्रह्म विष्णु और शिव की पूजा होती थी, जिसका प्रारंभ गुप्त युग में हुआ। ब्रह्म वैष्णव और शैव संप्रदायों का एक साथ समन्वित होकर एकीकृत होना त्रिमूर्ति की अभिव्यंजना है। समन्वय की यह उदार भावना गुप्त युग की अभूतपूर्व देन है। तीनों देवताओं के गुण बल और स्वभाव को एक ही आधार स्थल पर समाहित करके बहुदेववाद को एकेश्वरवाद की ओर अग्रसर किया गया। कालिदास ने अपने ग्रंथों में इन तीनों देवताओं की समान भाव से वंदना की है तथा उनके समान और वैभव का वर्णन किया है। अतः इन तीनों देवताओं का वैभव त्रिमूर्ति के समाहार और प्रतिष्ठापन में दर्शित होता है। कालिदास स्वयं समन्वयवादी विचार के थे। उनके वैष्णव धर्म का प्रतीक अंग रघुवंश है, जिसमें राम के वैभव और एक ऐश्वर्य युक्त चरित्र का रूपांकन है, किंतु ग्रंथ का प्रारंभ शिव की स्तुति से किया गया है, जो महाकवि के शैव होने का परिचायक है। कालिदास शिव के श्रेष्ठ उपासक थे। उन्होंने शक्ति के पुरुष से विलग होने और फिर पहचानी जाकर एक होने का प्रतिभिज्ञा वर्णन का पूर्ण रूप अपने ग्रंथ शाकुंतला में विवृत किया है। अतः उन्होंने शिव की सर्वत्र आराधना की है, स्तुति की है। वैसे यत्र तत्र ब्रह्मा की भी उन्होंने अतिशय वंदना की है, जिनका उदात्त रूप कुमार समूह में देखा जा सकता है। इस प्रकार तीनों विशिष्ट देवताओं का गुणगान करके महाकवि ने सहिष्णुता, एकत्व और बहुदेववाद का चित्रण किया है, जिनका समन्वित रूप त्रिमूर्ति की एक मूर्ति के रूप में देखा जा सकता है। यह कल्पना अद्वैत सिद्धांत को भी स्पष्ट करती है। एलिफेंटा की त्रिमूर्ति अत्यंत विख्यात है, जिसमें ब्रह्म, विष्णु और महेश हैं। ब्रह्मा सर्जन, विष्णु पालक और महेश संहार के प्रतीक हैं। हरिहर के रूप में शिव को विष्णु के साथ दर्शित किया गया, जिसने द्विदेव की कल्पना को मुखर किया। वैष्णव और शैव धर्म के समन्वय का यह ज्वलंत प्रमाण था, जिसकी कल्पना महाकवि कालिदास ने अपने ग्रंथ में की थी। वस्तुतः यह दोनों संप्रदायों के पारस्परिक सौहार्द सम्मिलन और समन्वयवादी प्रकृति कारण ही संभव हो सका। नहीं तो उत्तर भारत में भी दक्षिण भारत की तरह वैष्णव और शैव के बीच संघर्ष चल पड़ता। वैष्णव और शैव के समन्वय की जो परंपरा कालिदास ने प्रारंभ की थी, वह निरंतर अबाधित रूप में चलती रही, जिसकी पराकाष्ठा तुलसीदास कृत रामचरितमानस में हुई। हरिहर की अनेकानेक मूर्तियां गुप्त युग में कोरी गईं तथा दोनों संप्रदायों की भावना को एक ही मूर्ति के माध्यम से व्यक्त किया गया। मूर्ति के दाएं भाग में शिव के लक्षण हैं, जैसे जटा बढ़ाए हुए त्रिशूल, हाथ में परशु या अंकुश एवं बाएं हाथ में किरीटधारी विष्णु, जिनके हाथ में शंख और चक्र है। इस प्रकार से यह चैप्टर भी समाप्त होता है।